Apologies for that. तो वर्सेस 102 टू 108 हम पढ़ रहे थे. अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलाम अला इबादिहि अल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद. औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अफहसिबल्लज़ीन कफरु अन यत्तखिज़ु इबादी मिन दूनी औलिया. इन्ना अअतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. तो ये जो आयात हैं, आयात नंबर 102-108, ये सूरह कहफ की तकरीबन आखिरी आयात हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयात कितनी है सूरह कहफ के अंदर? 110 आयात हैं. ठीक है, तो इन आयात की बात सिर्फ दो और आयात रह जाएंगी. इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने हमें कुछ आखिरत के हालात बताए. ठीक है, डे ऑफ जजमेंट के और उसके बाद क्या होने वाला है. तो इस आयत में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, आयत नंबर 102 में, अफहसिबल्लज़ीन कफरू, के डू दीज पीपल हु आर डिसबिलीवर्स, जो कुफर करने वाले लोग हैं, काफिर हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, तो क्या इन लोगों ने ये सोच रखा है, क्या इन लोगों ने ये गुमान कर लिया है, सोच लिया है, हैव दे अज्यूम्ड अन यत्तखिज़ू इबादी, that they take my servants as min duni awliya, ke mere ilawa jo mere servants hai na, inko inhone apne awliya bana liya hai, apne dost bana liya hai. Ek minute, actually isse pehle wali ayat hamari mukammal nahi hui thi, kyunki pichli hi class ke andar hum qiyamah ke din ke bare mein baat kar rahe the na, ke सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, कैसे तबाह होगी. फिर उसके बाद फिर यानी सूर के बारे में बात करी थी, और फिर मैदान हशर जो है वो मैदान अरफात होगा, जिसको स्ट्रेच किया जाएगा, और उस मैदान अरफात के अंदर सारे लोगों को अल्लाह ताला खड़ा कर देंगे. ठीक है, और उस मैदान अरफात के बाहर क्या होगा, ये सवाल किया था शायद मोहम्मद ने या किसी दूसरा, उस सवाल ने सवाल किया, क्या होगा मैदान अरफात के बाहर? आपने सवाल पूछा था, लेकिन जवाब तो हो गया था उसमें. आप बताएं, जन्नत और जहन्नम. ठीक है, तो मैदान अरफात बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होगी, जिसके ऊपर सब लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा. ठीक है, अब इस ये बहुत बड़ी फ्लैट सरफेस होगी, क्योंकि इसके ऊपर सारे के सारे इंसान भी होंगे, जिन भी होंगे, जानवर भी होंगे. ठीक है, और इसी जगह पर एक स्पेशल पोजिशन, एक स्पेशल जगह भी होगी. वो स्पेशल जगह जो है वो मैदान अरफात यानी मैदान हशर में एक स्पेशल जगह भी होगी. वो स्पेशल जगह किसी को पता है क्या होगी? मैदान हशर में एक स्पेशल जगह होगी, वो क्या होगी? नेक लोगों की जगह होगी. अच्छा, तो उसमें कौन सी वाली स्पेशल बात होगी, क्या खास बात होगी उस जगह के अंदर? कैसे होगी, कैसे वो जगह कूल हो जाएगी, किसी को पता है? अल्लाह ताला के अर्श का साया होगा उस जगह पर. ठीक है, शेड ऑफ द थ्रोन. ठीक है, तो अल्लाह ताला का जो अर्श है ना, जिसके ऊपर अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला है. ठीक है, तो वो अर्श जो है वो नीचे आ जाएगा. ठीक है, मैदान हशर जो होगा ना, जो प्लेन ऑफ जजमेंट है, ठीक है, तो उसके ऊपर आ जाएगा अल्लाह ताला का अर्श. लेकिन अल्लाह ताला के अर्श का जो शेड पड़ेगा ना, जो शेडो पड़ेगा, या शेड पड़ेगा, वो मैदान हशर के सिर्फ एक एक पोर्शन में पड़ेगा, पूरे के पूरे मैदान हशर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो पोर्शन होगा ना, उस पोर्शन में सेवन टाइप्स ऑफ लोग होंगे, सेवन टाइप्स, ठीक है, सेवन पीपल ऑफ द शेड उनको कहते हैं। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वो कौन लोग होंगे जो कि उस दिन अर्श के साए के नीचे होंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा शेल्टर फ्रॉम सन, हाँ, क्योंकि बाकी लोग जो होंगे उनके ऊपर कोई शेड नहीं होगा, तो सन जो है वो बहुत करीब आ जाएगा और सन की जो गर्मी है वो उन लोगों के ऊपर डायरेक्टली पड़ रही होगी, बीच में कोई शेड नहीं होगा, तो इसकी वजह से वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा पसीने में नहा जाएंगे, बहुत पसीना निकलना शुरू हो जाएगा उन लोगों का, ठीक है। अब सन अगर इतना करीब आ जाए तो पसीना तो खाली नहीं निकलना चाहिए, फिर तो जल के भस्म हो जाने चाहिए, है ना, बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि सन की जो हीट है वो हीट तो यानी कितने थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस है ना, फ्यू थाउजेंड, हाँ, यानी रियाज में कितनी गर्मी होती है, 45 डिग्री सेल्सियस होती है, कराची में 40 डिग्री सेल्सियस होती है, तो उसके अंदर हमारा पसीना निकल जाता है और हम बुरी तरीके से ना वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सन तो थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ज्यादा हॉट है, तो वो अगर इतना करीब आ जाएगा, जैसे कि हदीस में आता है कि वो बस बहुत ही ज्यादा करीब होगा, सवा निजा का लफ्ज आया, सवा निजा मीन्स वेरी वेरी क्लोज, ठीक है। तो जब इतना क्लोज सन आ जाएगा तो पसीना तो फिर नहीं आना चाहिए, फिर तो सब कुछ ही खत्म हो जाना चाहिए, है ना, थाउजेंड ऑफ डिग्री, तो फिर ऐसा क्यों होगा कि सिर्फ पसीना आएगा, लेकिन पसीना बहुत आएगा, इतना पसीना आएगा कि बह बह करके वो जमा होना शुरू हो जाएगा और वो फिर पानी जिस तरह राइज होता है ना, उस तरह पसीना राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, हत्ता कि पसीना गर्दनों तक आ जाएगा, सिर्फ मुंह बाहर रह जाएगा, ठीक है, पूरा, जैसे आप स्विमिंग पूल में जाते हैं ना तो आपका मुंह बाहर होता है, बाकी पूरा बॉडी स्विमिंग पूल के अंदर होती है, ठीक है, उसी तरीके से पसीने के स्विमिंग पूल के अंदर लोग खड़े होंगे, ठीक है, फ्लोटी के साथ फ्लोटी भी होगी, तो इतनी कम गर्मी सन की वो कैसे हो जाएगी, तो उसके ऊपर एक एक एक्सप्लेनेशन है कि ये जो सन है ना, जिस वक्त कयामत कायम होगी ना, तो सन उस वक्त ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ठंडा, ठीक है, अभी जितना हॉट है ना, थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज हॉट, तो उसकी जो गर्मी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और कम होते होते बहुत कम हो जाएगी, क्यों इतनी कम हो जाएगी, उसकी वजह क्या है कि सन की हीटनेस की जो हॉटनेस है वो इतनी कम कैसे हो जाएगी, किसी को पता है उसका जवाब, सन इतना कम गर्म कैसे हो जाएगा, गर्म तो वो बहुत होगा लेकिन थाउजेंड ऑफ डिग्रीज हॉट नहीं होगा, लोगों का ख्याल करके कम गर्म हो जाएगा, बड़ा अच्छा है वो तो, सर नहीं, कैसे, इट विल बी डाइंग because the people will burn. अच्छा, तो सन इतना कम गर्म क्यों हो जाएगा, बिकॉज सन इज ए स्टार, ठीक है, सन एक स्टार है, और आपने जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा अपनी साइंस की बुक में कि स्टार्स जो होते हैं ना, ये डाई होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं, कैसे मरना शुरू हो जाते हैं, कोई इंसान को थोड़ी होते हैं ये मर जाते हैं, वो ऐसे होते हैं कि सन इतना गर्म क्यों है, बिकॉज उसके अंदर नाइट्रोजन गैस है जो कि जल रही है, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन गैस उसका पेट्रोल है, समझते हैं, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल जलता है, आप आग जलाते हैं तो आग के अंदर कोई चीज जलाते हैं ना, कोई लकड़ी जलाते हैं या गैस जलाते हैं या पेट्रोल जलाते हैं, ठीक है, तो जब आप जलाते रहते हैं किसी चीज को तो जलते जलते वो क्या होती है, फिर एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, फ्यूल खत्म हो जाता है ना, गाड़ी चलाते चलाते बिलाखिर गाड़ी के अंदर फ्यूल खत्म हो जाता है, फिर आपको नया फ्यूल डालना होता है, तो अल्लाह ताला ने ना सन के अंदर बहुत सारा फ्यूल डाला हुआ है, नाइट्रोजन गैस है वो फ्यूल सन की, ठीक है, तो ये जो फ्यूल है ना ये बर्न हो रहा है, एवरी डे इट्स बर्निंग, तो बर्न होते होते ये फ्यूल कम हो रहा है ना, राइट, फ्यूल तो कभी ना कभी तो उसने मतलब कम हो रहा है, और कम जो चीज होती है वो कभी ना कभी खत्म भी हो जाती है, तो जब कयामत का दिन होगा ना तो उस वक्त ये फ्यूल नाइट्रोजन का ये कयामत का बहुत थोड़ा सा रह जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, तो सन की जो हीट है ना वो उस वक्त तक, यानी समझ लें कि शायद फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो अब पुराना जो वो जल रहा था ना, तो उसी की जैसे जैसे कि आप अगर कभी आपने कबाब बनाया हो बारबेक्यू के लिए, ठीक है, ठीक है, तो आप उसके लिए कोयला जलाते हैं ना, तो कोयला जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उसके ऊपर फिर आप सीख रख करके कबाब बनाते हैं। फिर उसके बाद जब कबाब बन चुके होते हैं तो फिर आप उन कोयलों को बुझा देते हैं, ठीक है ना, उनकी आग को आप हवा से या पानी डाल करके बुझा देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या उसके बाद आप उसको हाथ लगा सकते हैं? हाथ तो नहीं लगा सकते ना। अगर वो जो बुझे हुए कोयले होते हैं उनको भी अगर आप हाथ लगाएं तो आपका हाथ जल जाएगा, हालांकि वो अब बर्न नहीं हो रहे, राइट, अब वो ठंडे हो चुके हैं, लेकिन हाथ लगाने से आपका हाथ जल जाएगा। इसी तरीके से सन जो है ना, उसका फ्यूल खत्म हो चुका होगा, उसकी आग बुझ चुकी होगी, लेकिन फिर भी वो इतना हॉट होगा कि हमारे करीब आने के बाद उसकी गर्मी की वजह से हमारा पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब के साथ होगा कि जी, तो ये उन सब लोगों के साथ होगा कि जिनके ऊपर कोई शेड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जिनके ऊपर अल्लाह ताला के अर्श का शेड होगा, तो अल्लाह ताला का अर्श जो है वो तो अल्लाह ताला के नूर से, ऑफ कोर्स उसके अंदर तो इतनी ठंडक होगी, इतना नूर होगा, इतना उसके अंदर पीस होगा कि वो लोग जो है ना वो बहुत आराम से रहेंगे, आराम से वो इंतजार करते रहेंगे कि कब जो है वो सब लोगों का हिसाब किताब होगा, और उसके बाद फिर लोगों को जन्नत में डाला जाएगा और लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा। जिसको जन्नत में जाना है जन्नत में जाएगा, जिसको जहन्नुम में जाना है जहन्नुम में जाएगा, ठीक है। तो ये शेर ऑफ द ये How will the sun come so close? Allah will order the angels to bring it close. ठीक है, तो close आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा? इसकी भी actually थोड़ी बहुत explanation है, scientific भी। वो भी आपको चलें बता देते हैं कि सन जो है ना वो अपने ऑर्बिट के अंदर चल रहा है, ठीक है, एक ऑर्बिट है जिसके अंदर जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है ना अपने ऑर्बिट में, मून रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में, ठीक है, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं सब अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं ना, उसी तरीके से सन का भी एक ऑर्बिट है जो कि बहुत बड़ा ऑर्बिट है, सोलर सिस्टम से बड़ा। वो इस सन इज ऑल्सो मूविंग, सन स्टिल नहीं है, वो भी मूव कर रहा है, तो हर चीज अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन जब कयामत कायम होगी ना, तो ये जो कयामत जिस वक्त चीजें फटनी शुरू होंगी और फिर चीजें जो है ना वो क्या होगा कि वो अपने ऑर्बिट से, जो कि उनका एक ऑर्बिट बना हुआ है ना, वो अपने ऑर्बिट से हट जाएंगी, ठीक है, वो थोड़ा सा अपने ऑर्बिट से हिल जाएंगी। ये जो एक भी चीज, जस्ट वन थिंग, लेट से अर्थ, अर्थ अगर अपने ऑर्बिट से हल्की सी भी हट गई ना, कि वो यूं घूमने की बजाय वो थोड़ा सा यूं आ गई, आगे की तरफ चली गई, तो सिर्फ एक अर्थ के अपने ऑर्बिट से हल्का सा हिल जाने की वजह से क्या होगा, सारे के सारे प्लैनेट्स सब कुछ अपने ऑर्बिट से हिल जाएगा, सब कुछ अपने ऑर्बिट से हिल जाएगा, ठीक है। कैसे हिल जाएगा? क्योंकि ये ऑर्बिट जो है ये कोई रस्सी कोई थोड़ी बंधी हुई है, ये तो सब ग्रेविटी की वजह से है। ग्रेविटी क्या चीज होती है? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट होता है ना, तो ये सब का सब जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है, ये सब का सब एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चल रहा है, ठीक है। देखें अर्थ जो अपने ऑर्बिट में घूम रही है ना, तो अर्थ के इस तरफ क्या है? मार्स। और अर्थ के इस तरफ क्या है? सन की तरफ, वीनस, ठीक है ना। तो वीनस और मार्स इन दोनों की एक मैग्नेटिक फोर्स है जो कि अर्थ को अपनी तरफ पुल करती है, इधर से ये पुल कर रहा है, इधर से ये पुल कर रहा है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये दोनों की ऑर्बिट्स की वजह से अर्थ के ऊपर ऐसे पड़ रही है कि अर्थ ना इधर मूव करती है टूवर्ड्स वीनस, टूवर्ड्स मार्स मूव नहीं करती अर्थ, ना अर्थ जो है वो वीनस की तरफ मूव करती है, बल्कि अर्थ इन दोनों के बीच में मूव करती है, बीच में, ना उधर जाती है ना इधर जाती है। और इस फोर्स के ऊपर सिर्फ वीनस की फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती अर्थ के ऊपर, बल्कि सन जो इतना बड़ा है तो सन की भी मैग्नेटिक फोर्स अर्थ के ऊपर अप्लाई हो रही होती है, सन भी अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से अर्थ जो है ना वो सन के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके घूम रही होती है, ठीक है। तो जरा सा अगर ये मोशन ऑफ हो जाए किसी एक भी चीज की, तो उस ऑफ होने की वजह से ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब ये खराब हो गई ना, अब कोई अपनी जगह पे बाकी नहीं रहेगा, हर कोई फिर क्या होगा, जैसे कि जो लोग बेचारे ऑनलाइन है वो देख नहीं सकते, तो क्या होगा, जैसे मार्स ऐसे घूमते घूमते एकदम से ऐसे निकल जाएगा, उधर कहीं चला गया, ठीक है। वीनस जो है वो ऐसे घूमते घूमते इधर तक निकल गया, ठीक है, अर्थ जो है वो घूमते घूमते कहीं और जाना शुरू हो गए, ठीक है, सारे अपने अपने जैसे बिल्कुल ऐसे ऐसे भागना शुरू हो गए सारी चीज, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सन है ना, सन जो है ना सिर्फ ये कि उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से कि उसकी गर्मी कम हो जाएगी, बल्कि और भी क्या चीज होगी कि सन भी जो है ना वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा और सन भी जो है वो कहीं शूट करेगा, ठीक है। अच्छा आप इसको म्यूट कर लें। अच्छा तो सन भी जो है ना अपने ऑर्बिट से शूट जो करेगा ना, तो अब ये सन किधर जाएगा? अल्लाह ताला का फैसला ये है कि सन जो अपने ऑर्बिट से निकलेगा ना, तो वो निकल करके किधर आएगा? अर्थ की तरफ आएगा, जमीन की तरफ आएगा, ठीक है। और जमीन के अंदर जो ओशंस हैं, ओशंस, उन ओशंस के अंदर आकर के गिरेगा, ओशंस में, शायद पैसिफिक ओशन के अंदर आके गिरे, जैसे कि पैसिफिक ओशन इतना बड़ा ओशन है, या ये कि उस वक्त जो है ना वो पूरी जमीन, एक्चुअली पूरी जमीन ही ओशन बन जाएगी। पूरी जमीन ओशन कैसे बन जाएगी? इसलिए कि जो लैंड है ना ये थोड़ी सी है अर्थ के अंदर। अगर आप अर्थ का ग्लोब देखा है कभी, ग्लोब घर में होना चाहिए, अगर नहीं है ग्लोब घर में ना, तो ग्लोब खरीद करके रखें, अपने मेम्बू से कहिएगा कि ग्लोब देना है, ठीक है। तो ग्लोब को कभी कभी देखना चाहिए, ग्लोब के अंदर जो लैंड है जिसके ऊपर इंसान रहते हैं, ये लैंड थोड़ी है और वाटर बहुत ज्यादा है। 3/4 ऑफ द अर्थ इज वाटर, 1/4 इज ओनली लैंड, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा कि ये सारा का सारा पानी जो है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा होगी कि पानी जो है वो उबल उबल करके ऊपर आएगा और उबलने की वजह से जितनी लैंड है ना अर्थ के ऊपर, ये सारी की सारी लैंड पानी से कवर हो जाएगी, पूरी लैंड पानी से कवर हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अगर कोई बाहर से देखे अर्थ को तो पूरी अर्थ पानी नजर आएगी, उसके अंदर कोई जमीन रहेगी नहीं, पूरी अर्थ पानी बन जाएगी। तो जब सन आकर के अर्थ में गिरेगा ना, तो वो कहां गिरेगा? वो पानी के अंदर गिरेगा। और उस वक्त तक सन इतना छोटा भी हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी फ्यूल जल जल करके खत्म हो चुका है, तो ना सिर्फ ये वो ठंडा हो चुका होगा बहुत ज्यादा, बल्कि साइज में भी बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि वो अर्थ के ओशन के अंदर गिर सके, ठीक है। और जब वो अर्थ के ओशन के अंदर गिरेगा तो फिर क्या होगा? जब तक आप सवाल पूछें, लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठेंगी कि सब कुछ भर जाएगा, सब कुछ पानी पानी हो जाएगा। जैसे सैलाब आता है ना, बांग्लादेश के में सैलाब आता है ना, तो पानी इतना ज्यादा आता है कि बांग्लादेश का बहुत ज्यादा एरिया पानी हो जाता है। मर तो चुके होंगे उस वक्त, लोग मर चुके हैं, अब तो मरने के बाद की बात हो रही है सारी, लेकिन लोग तो आवाज से ही मर जाएंगे ना। तो सन जब आकर के ओशन में गिरेगा तो फिर क्या होगा? सन बेशक उसका फ्यूल खत्म हो चुका है, नहीं सन ठंडा नहीं होगा, बल्कि जो ओशन है ना वो पूरा का पूरा ओशन वो आग बन जाएगा। सारा का सारा ओशन, सारा का सारा पानी आग की तरीके, आग बन करके वो भड़क उठेगा, ठीक है। अच्छा तो ये तो कयामत के दिन की मैदान हशर की कुछ बातें थी। अच्छा सूरह काफ, माशाल्लाह हुफाज हजरात को याद है, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, سورہ قاف قرآن مجید کے اندر 26 پارے کے اندر, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کو قریب لایا جائے گا, ٹھیک ہے, للمتقین, جو تقوی والے لوگ ہوں گے, گاڈ فیئرنگ لوگ ہوں گے, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جنت کو کھینچ کر کے قریب لے کر کے آؤ, کس کے قریب لے کر کے آؤ؟ میدان حشر کے قریب لے کر, ٹھیک ہے. تو جنت جو ہے میدان حشر کے بالکل سائیڈ پہ آ جائے گی, کریکٹ, ٹھیک ہے. کیا چیز رہ جائے گی میدان حشر اور جنت کے بیچ میں؟ کچھ رہ جائے گا, کچھ ایسا معاملہ ہوگا کہ جنت بالکل میدان حشر سے آ کر کے ایسے جڑ نہیں جائے گی, بلکہ بیچ میں بھی ایک چیز ہوگی, پل صراط تو ہوگا, ٹھیک ہے, ایک پل ہوگا جو کہ میدان حشر سے سٹارٹ ہوگا اور وہ جنت میں انٹر ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو صرف پل ہے نا, اوپر نیچے کیا ہوگا اس کے؟ جہنم, ٹھیک ہے. تو جس طرح سے جنت کو قریب لایا جائے گا نا, لیکن میدان حشر سے اس کو جوڑ نہیں دیا جائے گا کہ آپ میدان حشر سے جم کر کے جنت میں چلے جائیں, ایسے نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. بیچ میں جہنم ہوگی, ٹھیک ہے. تو جہنم کو بھی فرشتے زنجیروں سے جکڑ کر کے, کھینچ کر کے لے کر کے آئیں گے, اور جہنم کو جنت اور میدان حشر کے بیچ میں जा करके एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके ऊपर फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक पुल सरात इस्टेब्लिश हो जाएगा, ब्रिज बन जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो अब लोग जो हैं वो मैदान हशर से जैसे जैसे फारिग होते जाएंगे ना कि भाई हिसाब हो गया, आपका हिसाब हो गया, आपका हिसाब हो गया, तो अब लोगों को सबको जमा कर दिया जाएगा और फिर एक वक्त आएगा जब सबसे कहा जाएगा कि चले अब पुल सरात के ऊपर से गुजरो, ठीक है। और उसके ऊपर से गुजरने वाले फिर जो होंगे तो सारे के सारे उसके ऊपर से सारे इंसान और जिन्नों के भी गालिबन, जिन्नों का एक्चुअली आई एम नॉट श्योर कि जिन्नों के साथ एग्जैक्टली कैसे होगा, लेकिन सारे इंसान चाहे वो नबी हो अल्लाह ताला के, चाहे वो अल्लाह ताला के फ्रेंड्स औलियाए कराम हो, चाहे वो आम मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे जैसे भी हो, सारे के सारे इंसान गुजरेंगे उसके ऊपर से। जानवरों को उससे पहले खत्म कर दिया जाएगा, दे विल बी टर्न्ड इनटू डस्ट, ठीक है। यकूल काफिरु या लैतनी कुंतु तुराबा, ठीक है, कि जानवरों का अल्लाह ताला हिसाब किताब लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दो बकरियों को लाया जाएगा, ठीक है, एक बकरी ने दूसरी बकरी को सींग मारी थी, ठीक है। अब ये गलत काम किया था उसने, क्यों भी सींग मारी आपने दूसरी बकरी को, ठीक है। तो अल्लाह ताला ना दूसरी बकरी को जिसको सींग लगी थी उसको अल्लाह ताला सींग देंगे, क्योंकि शायद दुनिया में उसके पास सींग नहीं थी तो इसने उसको अपनी सींग उसको मार दी, ठीक है। तो अल्लाह ताला उसको सींग अता फरमाएंगे और उससे कहेंगे कि तुम अब इसको सींग मारो, अपना बदला लो, ठीक है। तो ये बकरी फिर इस बकरी को सींग मारेगी। अब इसके बाद ना इन दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, यानी इन दे आर डन, भाई इसका भी जो भी इसने गलत काम किया था वो पूरा हो गया, इसने भी गलत काम किया वो भी पूरा हो गया, दे आर डन। उसके बाद क्या करेंगे, इसी तरह से सारे जानवरों का आपस में हिसाब किताब हो जाएगा, जिसने किसी के साथ गलत काम किया उसको उसका बदला मिल जाएगा। जब ये सब कुछ हो चुकेगा ना तो फिर अल्लाह ताला सारे जानवरों को हुक्म देंगे या फरिश्तों को जो भी होगा हुक्म ये देंगे कि तुम सब के सब मिट्टी बन जाओ, डस्ट बन जाओ, धूल मिट्टी जिसको कहते हैं, तुम डस्ट बन जाओ, तुराब, राइट। तो सारे जानवर जो है ना वो खत्म हो जाएंगे और वो मिट्टी बन करके एकदम से जैसे वैनिश हो जाएंगे, खत्म, ठीक है। तो कुरान के अंदर इसका जिक्र सूरह नबा के अंदर है, लास्ट आयत हो सूरह नबा। घोड़ा भी तो जानवर ही है ना, तो सारे जानवर, ठीक है। इसके बारे में फिर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया या लैतनी कुंतु तुराबा, कि ये जो काफिर लोग होंगे ना वो काफिर लोग इस पूरे के पूरे सीन को देख रहे होंगे कि जानवरों के साथ अल्लाह ताला कैसा हिसाब दे रहे हैं, एक एक सींग उसने उसको मारी तो उसका भी बदला दिया जा रहा है। तो ये सब लोगों के सामने हो रहा होगा और नॉन मुस्लिम्स, नॉन बिलीवर्स सारे उसको देख रहे होंगे। तो जब वो ये चीज देखेंगे ना तो अब उनको याद आएगा कि उन्होंने दुनिया के अंदर क्या किया, एक एक चीज उनको याद आनी शुरू हो जाएगी कि उन्होंने किसके साथ जुल्म किया, किसके साथ झूठ बोला, किसको धोखा दिया, किसको कत्ल किया, किसको ये किया, किसको किया, सब कुछ उनको याद आना शुरू हो जाएगा और उनकी हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो हिसाब किताब कर रहे हैं ना ये कितना ज्यादा डिटेल में जाकर के हिसाब किताब कर रहे हैं, ठीक है, इतना तफसील के साथ कि भाई उसने एक सींग मारी थी उसका भी हिसाब हो रहा है। तो अब वो समझे, वो कहेंगे कि हमारा क्या बनेगा, हमारे साथ जब ये हिसाब किताब शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, कैसे जवाब देंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त ना फिर जब वो जानवरों को देखेंगे कि सारे जानवरों को डस्ट बना दिया है ना, तो काफिर उस वक्त तमन्ना करेंगे कि काश के हमें भी डस्ट बना लिया जाता, काश के हम भी जानवर होते और हमारा हिसाब किताब भी अगर होना था तो हो जाता, लेकिन उसके बाद हमें भी डस्ट बना दिया जाता, कम अज कम हमें जहन्नुम में तो जाना जाना पड़ता, ठीक है। तो अल्लाह ताला कुरान में इस तरह से स्पेसिफिकेशन करते हैं, ऑल द एनिमल्स विल बिकम डस्ट एक्सेप्ट फॉर दोज फ्यू हु विल गो टू जन्नत, जी बिल्कुल, सारे जानवरों को डस्ट बना दिया जाएगा सिवाय तकरीबन 10 जानवरों का, तफसीर के अंदर आया है कि उनको डस्ट नहीं बनाया जाएगा बल्कि उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो उनको जन्नत में दाखिल करने के लिए या तो उनको इंसानों की शक्ल दे दी जाएगी, ये भी उन्होंने लिखा है कि किसी इंसान की उनको बॉडी दे दी जाएगी, या ये हो सकता है जिस तरह से भी उनको, वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारी सूरह काहफ के अंदर ही सूरह काहफ का है ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कसवा और सूरह काहफ के अंदर जो कुत्ता है, एक मिनट बस, ठीक है, तो जो कुत्ता है और उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो गधा है, उस वक्त गधा जन्नत में जा रहा होगा और हम लोग जो गधे को गधा बोल करके हंसते हैं, ओ गधे तुम तो गधे हो, तुम तो बेवकूफ़ हो, तो उस वक्त वो गधा जो है ना वो हमारे ऊपर हंस रहा होगा, अगर हम जहन्नुम में जाने वाले खुदा ना खास्ता बन गए ना, तो गधा हंस रहा होगा कि तुम मुझे गधा कहते थे, मुझे बेवकूफ कहते थे, मेरे ऊपर हंसते थे, ठीक है ना। आज तुम जहन्नुम में जा रहे हो और मैं जन्नत में जा रहा हूँ, ठीक है। क्यों मैं जन्नत में जा रहा हूँ? क्योंकि मैं एक नेक आदमी की सोहबत में रहा, उसके साथ मैंने दोस्ती निभाई। उस दिन कुत्ता कह रहा होगा, तुम लोग मुझे बुरा कहते थे कुत्ता, और इस तरह से तुम्हें मुझे पत्थर मारा करते थे, कुत्ते की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं होती थी। देखो आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अस्हाबे कहफ के साथ दोस्ती लगाई थी और मैं उनके साथ ही रहा था, उन्हीं के साथ गार में गया, उन्हीं के साथ जो मैंने सारा वक्त गुजारा, अल्लाह ताला ने उनकी सोहबत की वजह से मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। और तुम लोग, तुम्हें अल्लाह ताला ने नबी भी दिए थे, तुम्हें अल्लाह ताला ने वली भी दिए थे, उलमा भी दिए थे, मशाइख भी दिए थे, लेकिन तुम उनकी सोहबत इख्तियार करने के बजाय तुमने बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार कर ली, बुरे लोगों के साथ दोस्ती लगा दी। तो जाओ तुम, अब देखो तुम जहन्नुम में जा रहे हो और मैं जन्नत में जा रहा हूँ। तो काश के हम उस दिन ऐसा ना, यानी इस दुनिया में ऐसा ना करें और उस दिन हमें ऐसा ना सुनना पड़े जानवरों के मुंह से। द अर्थ विल बिकम जहन्नुम एंड द एंजल्स विल पुल द अर्थ। हाँ, द अर्थ विल बिकम जहन्नुम एंड एंजल्स विल पुल द अर्थ, यानी पुल द जहन्नुम, ठीक है, विच इज ओरिजिनली द अर्थ। वोंट देयर बी सेवन एनिमल्स दैट विल एंटर जन्ना। हाँ, सेवन एनिमल्स, जी बिल्कुल आपने सही लिखा था, सेवन सेवन नहीं बल्कि 10, ठीक है। तो ये सब जहन्नुम के दिन के, सॉरी कयामत के दिन के कुछ अहवाल थे। अल्लाह ताला ने फिर आयत नंबर 100 में फरमाया था कि वह अरदना जहन्नम यौम इज्जत लिल काफिरीना अरदा, कि वी विल ब्रिंग जहन्नुम फुली एक्सपोज्ड बिफोर द इनफिडल्स, ठीक है। तो जहन्नुम भी जो जन्नत और मैदान हशर के दरमियान जो लाई जाएगी ना, तो वो नजर भी आ रही होगी, ठीक है। वो किस तरह नजर आ रही होगी कि जहन्नुम के अंदर जो चीजें बर्न हो रही हैं, तो उनकी जो जो फायर है ना, वो फायर इतनी ऊपर उठ रही होगी कि मैदान हशर से वो लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है। तो इसी को अल्लाह ताला ने यहाँ पे लिखा है, अरदना जहन्नमा यौमइज़िन लिल काफिरीन अरदा। उसके बाद अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फी गितान अन ज़िक्री व कानू ला यस्तती'ऊना समअ, ठीक है। कि अब ये काफिरों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये काफिर कैसे लोग होते हैं। कानत आयुनहुम, इनकी आंखें एक कवर में थी, ठीक है। यानी ये जो काफिर थे ना, अल्लाह ताला ने इनको आंखें तो दी थी, ये देख सकते थे चीजों को, ठीक है। ये कुरान को देख सकते थे, ये अल्लाह ताला के प्रॉफिट्स को देख सकते थे, ये उलमा मशाइख सबको देख सकते थे, ठीक है। और ये बहुत सारी और चीजें भी देख सकते थे कि देखो जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है उसके साथ दुनिया में क्या होता है, और जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करता है, नेक बन के जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उसको इज्जतें देते हैं, अल्लाह ताला उसको अच्छी जिंदगी अता फरमाते हैं, ये सब चीजें देख रहे होते थे। लेकिन इसके बावजूद ये लोग गौर नहीं करते थे, ठीक है, सोचते नहीं थे इनकी इन चीजों के ऊपर, गौर से देखते नहीं थे, और ये इबरत नहीं पकड़ते थे, ये इससे कोई लेसन नहीं लेते थे, ठीक है। तो इसको अल्लाह ताला इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि एज इफ इनकी आंखों के ऊपर एक कवर था, ठीक है, एक पर्दा जैसे पड़ा हुआ था इनकी आंखों के ऊपर, गोया कि इनको नजर ही नहीं आ रहा है कोई बात, हालांकि इनको नजर आ रही होती थी। तो उस कवर को ना गितान कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कवर था, तो इस कवर से होता क्या था कि अल्लाह ताला का जो जिक्र है ना, ठीक है, अल्लाह ताला का जिक्र का मतलब यहां पर है कि जो रिमाइंडर्स प्रॉफिट्स आकर के लोगों को बताते हैं, ठीक है, वो रिमाइंडर्स जो है ना, ये इनको नजर नहीं आते थे, ठीक है ना। अल्लाह ताला के रिमाइंडर्स से ये बिल्कुल एज इफ दे वर ब्लाइंड टुवर्ड्स द रिमाइंडर्स, ठीक है। तो अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फी गितान अन ज़िक्री, और दूसरी बात क्या फरमाई, व कानू ला यस्ततीउना समअ एंड दे वर नॉट एबल टू लिसन। क्या मतलब कि इनके कान होते थे, ये लोग सुन सकते थे बातों को, कुरान की आवाज़ भी इनको आती थी, नबियों की जो अच्छी बातें होती थी ये भी उनको सुनाई देती थी, ठीक है, लेकिन ये लोग उन बातों को इग्नोर कर देते थे, ठीक है ना, गौर नहीं करते थे और अच्छे शौक से नहीं सुनते थे। दे डिड नॉट हैव एनी डिजायर इन देम, ठीक है, कि इन बातों को सुन करके इनको समझने की कोशिश करें और उनके ऊपर फिर अमल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये लोग फिर सुनते नहीं थे, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो कानू ला यस्तती'ऊना एंड दे वर नॉट एबल टू लिसन। तो नॉट एबल टू लिसन का मतलब ये है कि दे वर लाइक दे डिड नॉट हैव एनी डिजायर टू लिसन, ठीक है। इस बात को ना अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पे कुरान के अंदर रिपीट किया कि अल्लाह ताला ने इनको आंखें दी थी लेकिन ये देख नहीं सकते, देखते नहीं थे, ठीक है। वलहुम आयुनुन, वलहुम आयुनुन ला, क्या है, ला युबसिरून बिहा, वलहुम आजानुन ला यस्मऊन बिहा, कि इनको अल्लाह ताला ने आंखें दी थी लेकिन ये इन आंखों से देखते नहीं थे, और इनको अल्लाह ताला ने कान दिए थे लेकिन ये उन कानों से सुनते नहीं थे, और इनको अल्लाह ताला ने अकल दी थी लेकिन ये इस अकल से ये सोचते नहीं थे। और अल्लाह ताला इसके बाद क्या फरमाते हैं, उलाइका कल अनआम, ये लोग तो कैटल की तरह थे, मवेशियों की तरह, जैसे गायें भैंसे बकरी मुर्गियां, राइट, ये तो उनकी तरह से लोग थे। बल हम अवल, बल्कि ये उनसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं, ठीक है, ये कैटल से भी ज्यादा बुरे लोग हैं। तो बार बार अल्लाह कुरान में ना इस तरह से फरमाते हैं कि ये जो काफिर हैं इनको अल्लाह ताला ने सारी नेमतें दी थी लेकिन इन्होंने इन नेमतों को इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो अगर हम भी फिर अब यही काम कर रहे हैं, चलो जी नाम तो हमारा बड़ा अच्छा अच्छा है, मोहम्मद किसी का नाम है, किसी का नाम जो है वो इब्राहिम है, किसी का नाम दाऊद है, सारे अम्बिया के ऊपर अच्छे अच्छे नाम अम्मा अब्बा ने तो रख दिए, ठीक है, लेकिन हरकतें हम भी वही कर रहे हैं जो काफिर करते हैं कि हमें जब कुरान सुनाया जाता है और अच्छी बात बताई जाती है तो हम जो है उन बातों को इग्नोर कर देते हैं, करते ही रहते हैं ये लोग, तो इनकी तो बस आदत ही है कि मौलवी साहब जो है ना वो तो बस बोलते ही रहते हैं इस तरह की बातें, है ना, और ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो सिखाते रहते हैं ना, तो इनका तो बस और बेचारों को कोई काम ही नहीं है, पार्ट ये बेचारे फारिग लोग हैं। तो अगर हम भी इस तरीके से सोच रहे हैं और हम भी इसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, तो फिर हमें और काफिरों में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ नाम मोहम्मद हो जाने से जन्नत पक्की नहीं हो जाती, ठीक है ना, नाम मोहम्मद हो जाने से या इब्राहिम हो जाने से या जो भी अच्छे अच्छे नाम, माशाल्लाह सबके नाम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन नाम रखने से जन्नत नहीं मिलती, ठीक है ना, जन्नत तो ईमान से मिलती है, ठीक है, अगर ईमान है तो जन्नत है और अगर ईमान नहीं है तो जन्नत नहीं, जहन्नम में पक्की, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये काफिर जो है ना वो मेरे यानी मुझे छोड़ करके मेरे दूसरे बंदों को अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं। अफहसब अल्लज़ीन कफरू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नमा लिल काफिरीन नुज़ुला, तो हमने इन काफिरों के लिए अपनी जहन्नम बनाई है नुज़ुला। नुज़ुला का मतलब क्या होता है, नुज़ुला का मतलब होता है पार्टी, पार्टी करने के लिए बनाई है, एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो अब जहन्नम वाली एंजॉयमेंट ये तो किसी को नहीं चाहिए, इसलिए जहन्नम के जो अल्लाह ताला एंजॉयमेंट कह रहे हैं ना, ये अल्लाह ताला यानी एक डिफरेंट स्टाइल में कह रहे हैं कि जैसे कि किसी को ना कि लोग हम कहते हैं ना उर्दू के अंदर किसी को खूब जोर से अगर कोई मारे ना फिर कहते हैं चलो चखो मजा, ठीक है, मजा चखो, जैसे कि आपको इसको लड्डू खिला रहे हैं मजा चखो, हालांकि असल में तो आप उसको डंडा मार रहे हैं लेकिन डंडा मार के आप क्या कहते हैं, चखो मजा जरा इस डंडे का, ठीक है ना, चलो मजे उड़ाओ अब तुम, मार के मजे उड़ाओ। तो ये आप कब कह रहे होते हैं, जब आप उसको बहुत ज्यादा मारना चाहते हैं और बहुत आप उसको बुरा समझते हैं, आप उसे नफरत करते हैं, बहुत बुरी तरीके से आप उसे ट्रीट कर रहे होते हैं ना, तो आप उसको मार भी रहे होते हैं और साथ साथ चखो मजा, लो मजा, चखो मजा, इस तरह की बात भी कर रहे हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला ना उस दिन काफिरों के साथ यही वाला मामला करेंगे कि देखो मैंने जहन्नम तुम्हारी फन के लिए बनाई है, तुम्हारी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है मैंने जहन्नम, ठीक है, क्योंकि तुम जो है ना वो दुनिया के अंदर तुम एंटरटेनमेंट चाहते थे, तुम्हें जन्नत की कोई जरूरत ही नहीं थी, तुम जन्नत का शौक ही नहीं रखते थे, तुम्हें कोई तमन्ना ही थी कि नहीं थी कि हमें जन्नत में डाला जाए, ठीक है ना। तो चूंकि तुमने दुनिया के अंदर एंटरटेनमेंट ले ली ना अपनी मन मर्जी की, तो अब जन्नत वाली एंटरटेनमेंट तुम्हें नहीं मिलेगी बल्कि अब तुम्हें जहन्नम वाली एंटरटेनमेंट मिलेगी, इसलिए कि ऑल यू डिजायर्ड वाज फन, ऑल यू वांटेड इन योर लाइफ वाज फन, तो इस वजह से मैं तुम्हें जहन्नम भी एज अ फन ही दे रहा हूं। लेकिन अब फर्क यह है कि अब तुम्हें फन नहीं मिलेगा बल्कि अब ईमान वालों को फन मिलेगा, असल फन तो ईमान वालों को मिलेगा जो कि जन्नत के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो नुज़ुलन का मतलब होता है पार्टी, पार्टी टाइम, एंटरटेनमेंट, फन, एंजॉयमेंट, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन नेगेटिव एंजॉयमेंट जैसे आपने देखा, ठीक है। सार्कास्टिकली, इसको कहते हैं ना अंग्रेजी में सार्कास्टिकली आप किसी को कह रहे हैं, तो ये भी इसी यही वाला अंदाज है। अच्छा, औलिया की कुछ डेफिनेशन इन्होंने, बल्कि औलिया से पहले इबादी, इबादी कुछ डिटेल्स लिखी हैं तो उसको हम क्विकली देख लेते हैं कि इबाद किसको कहते हैं? स्लेव्स को, स्लेव्स, ठीक है। तो जो काफिर थे उन्होंने अल्लाह ताला के स्लेव्स को अपना फ्रेंड बना लिया, ठीक है। फ्रेंड से यहाँ पर मुराद ये है कि वैसी फ्रेंडशिप नहीं जैसे कि आप किसी भी इंसान को अपना फ्रेंड बना सकते हैं, बल्कि औलिया वाली फ्रेंडशिप। औलिया वाली फ्रेंडशिप का मतलब ये होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है, और आपको जो है ना वो मदद कर सकें अल्लाह को छोड़ कर। इस तरह का फ्रेंड बनाया था उन्होंने। तो अब ये कौन, किन लोगों की बात हो रही है, किन लोगों को इन काफिरों ने फ्रेंड बनाया था, ठीक है। तो उसके बारे में फिर मुफस्सिरीन ने लिखा है यहाँ पर भी मुतशफ़ी रहमतुल्लाह ने भी लिखा है कि इबादी के यहाँ पे ना कई मानी हो सकते हैं। एक मानी ये है कि इन्होंने एंजल्स को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है। एंजल्स इनके फ्रेंड बने नहीं थे, लेकिन इन्होंने ना अल्लाह को छोड़ करके एंजल्स की वर्शिप शुरू कर दी, ठीक है। कुछ अरब्स ऐसे होते थे जो कि एंजल वर्शिप किया करते थे, तो उन्होंने ना यानी कुछ या तो बुत बनाए हुए होंगे और बुतों के नाम जो है वो एंजल्स के नाम के ऊपर रखे हुए होंगे, ठीक है, या उन्होंने जो है वो ऐसे ही बगैर बुत के जो है वो हमारा गॉड जो है वो तो फलाना एंजल है और हमारा गॉड फलाना एंजल है, ठीक है। तो इस तरह की उन्होंने अपनी वर्शिप शुरू करी हुई थी, एंजल्स की वर्शिप, ठीक है। तो ये वर्शिप वो करते क्यों थे एंजल्स को, कि भाई एंजल्स इनकी मदद करेंगे, एंजल्स इनको ना अल्लाह ताला के अजाब से बचा लेंगे, हालांकि एंजल्स ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बचा सकते। तो कुछ लोग एंजल्स को अपना खुदा बना लेते थे और कुछ लोग जो हैं वो जिन्नों को अपना खुदा बना लेते थे, ठीक है, जिन्नों को या शयातीन को। तो वो भी क्यों बनाते थे अपना खुदा, ताकि जिन उनकी मदद कर सकें अगेंस्ट अल्लाह सुब्हान अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला की नाराजगी से जिन बचा सकें, अल्लाह ताला की अजाब से जिन बचा सकें। कुछ लोगों ने जिन्नों को फिर अपना गॉड बना लिया था और कुछ लोगों ने इंसानों का अपना गॉड बना लिया था, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियन ने अपना गॉड बनाया हुआ है और उज़ैर अलैहिस्सलाम को जो जूज होते हैं उन्होंने अपना गॉड बनाया हुआ है, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने के कुछ नेक लोगों को, इंसानों को अपना गॉड बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो भी क्यों बनाते हैं, ताकि ये इंसान अल्लाह ताला के अज़ाब से इनको बचा सके, हालांकि इंसान अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकते चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इबादी के अंदर एंजल्स भी आ सकते हैं, जिन्स भी आ सकते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी आ सकते हैं। हाँ, जैसे सिखों ने गुरु नानक को अपना गॉड बनाया हुआ है, तो इबादी का तो ये मतलब हो गया, और औलिया का भी ये मतलब हो गया कि वो अल्लाह ताला के अज़ाब से इनको बचा सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और आयत भी कर लेते हैं, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन अमाला। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम सलाम को फरमा रहे हैं कि कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए, हल नुनब्बिउकुम, क्या मैं तुम लोगों को ना बता दूं या क्या मैं तुम लोगों को ना बताऊं कि बिल अख़सरीन अमाला, एक ऐसे इंसान के बारे में या ऐसे इंसानों के बारे में जो कि अपने अमल के हिसाब से सबसे ज्यादा लॉस में है, अख़सरीना सबसे ज्यादा खसारे में है, लॉस में है। व्हाट विल हैपन टू द एंजल्स, बताया था ना कि जब सूर फूंकी जाएगी तो आखिर में एंजल्स भी मर जाएंगे, ठीक है। तो क्या मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में ना बता दूं कि जो कि सबसे ज्यादा बुरे हैं अमल के एतबार से, सबसे ज्यादा खसारे में, ठीक है, द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पीपल, ठीक है। फिर अल्लाह ताला उन लोगों को फिर डिस्क्राइब करते हैं, अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, वल्ला सायहुम फिल हयात दुनिया, कि जिन्होंने दुनिया की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा मेहनतें करी होंगी, बहुत एफर्ट करी होंगी, लेकिन उनकी सारी की सारी एफर्ट जो है ना, सारी की सारी मेहनत जो है वो खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा उस मेहनत का। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और ये लोग जो दुनिया के अंदर इतनी मेहनत करते थे ना, ठीक है,
वो समझते थे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब कि यहां पर किस मेहनत की बात हो रही है? यहां पर बिल्डिंग्स बनाने वाली मेहनत की बात हो रही है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उस मेहनत की बात हो रही है? कौन सी वाली मेहनत की बात हो रही है? ये लोग दुनिया में बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन उनकी सारी मेहनत जो है ना वो जाया हो जाएगी, वल्ला जाया। पैसों के लिए मेहनत करते थे? नहीं, इंसानों का अल्लाह बनाने के लिए। आप बताएं, बुरे कामों की मेहनत करते थे। यहाँ पर कोई नहीं बताएगा क्लासेस के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस में, इनकी जो मेहनतें हैं ना ये कौन सी वाली मेहनतें? वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, ये भी तो अल्लाह ताला ने कहा है ना इनकी मेहनत के बारे में कि ये लोग इन कामों को बहुत अच्छा समझते थे। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ये दीन की मेहनत करते थे, नेकी के काम। ठीक है, ये लोग जो हैं ये नेकी के काम किया करते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा नेकी के काम करते थे, बहुत ज्यादा इबादतें करते थे। ठीक है, और बहुत ज्यादा सोशल सर्विस करते थे। ठीक है, लोगों की मदद किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे, भूखों को कपड़े भी पहनाए करते थे जिनके पास कपड़े नहीं होते थे। बहुत ज्यादा नेकी का काम किया करते थे, बहुत नमाजें पढ़ते थे, बहुत सदका खैरात करते थे। ठीक है, लेकिन उनका ये सारा का सारा जो अमल और मेहनत है ना, जितनी उन्होंने ये सारी मेहनतें करी, ये सारी मेहनतें जो हैं वो जाया कर दी जाएंगी। ये लोग जब ये मेहनतें कर रहे होते थे तो ये समझते थे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे उन्होंने ट्रांसलेट किया है इसको? While they think that they are doing well, those are the ones whose effort in the worldly life has gone in vain. While they think that they are doing well, ये समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ठीक है, और लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन इनकी सारी की सारी इबादतें और सारी की सारी चैरिटी के जो काम हैं सारे के सारे बेकार, अल्लाह ताला उनमें से किसी को भी कबूल नहीं करेंगे। है? ये काम बेकार क्यों हो जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल ये सवाल सबको करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपके सवाल का जवाब दिया है, अल्लाह ताला को पता था उन्हें सवाल करना है। ठीक है, तो अगली आयत में उसका जवाब दे दिया अल्लाह ताला ने। कैसे जवाब दिया? उलाइका, ये वो लोग हैं, अल्लदीना, के जिन्होंने, कफरू बि आयाति रब्बिहिम, के जिन्होंने अल्लाह की अपने लॉर्ड की आयात का इनकार कर दिया। ठीक है, जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात को रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया। ठीक है, वलिकाइही, और अल्लाह ताला के साथ कयामत के दिन जो मुलाकात होगी उसको भी डिनाई कर दिया। ठीक है, तो चूंकि उन्होंने दो चीजों को डिनाई कर दिया, अल्लाह ताला की आयात को, अल्लाह ताला की आयात क्या होती है? कुरान। ठीक है, नबी की बातें, जो नबी ने बातें समझाई हैं वो सारी की सारी भी अल्लाह की आयात के अंदर शामिल होती हैं, और उसके अलावा अल्लाह ताला अपने साइंस दिखाते भी हैं बहुत सारे। तो इन्होंने उन सारी चीजों को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कि ये अल्लाह ताला की आयात नहीं है, अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल नहीं करी है। ठीक है, तो ये लोग काफिर लोग होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कि उन्होंने अल्लाह की आयात को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा कयामत के दिन को रिजेक्ट कर दिया कि हमें कयामत के दिन दोबारा खड़ा नहीं होना और हमें अल्लाह ताला के सामने हिसाब नहीं पेश करना। ठीक है ना, ये दो चीजें इन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो इसकी वजह से जितनी उन्होंने इबादतें करी, अल्लाह ताला की इबादतें करी, ठीक है, जितनी अल्लाह ताला की इबादतें करी, अल्लाह ताला ने सबको रिजेक्ट कर दिया, सबको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और जितने उन्होंने दूसरे नेकी ये काम किए जैसे लोगों की मदद करना वगैरह, चैरिटी वाला काम, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया, सबको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया अल्लाह ताला ने? अच्छा, ये लोग इबादत जो है ना ये अल्लाह की इबादत करते हैं, वायदा ये बुतों की खाली इबादत नहीं करते, अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं। इंसानों को दिखाने के लिए करते थे। वाई डिड दे रिजेक्ट अल्लाह? वो अल्लाह की इबादत तो अल्लाह ही के लिए करते थे, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने रिजेक्ट कर दिया। जी ईमानदार नहीं थे। हाँ ईमान वाले नहीं थे, ये तो ठीक है ईमान वाले नहीं थे, लेकिन क्यों ऐसा भी क्या नहीं कि ईमान वाले नहीं थे तो आपने इतनी मेहनत तो रिजेक्ट कर दी? नहीं, इनमें हर कोई दिखाने के लिए नहीं करता था, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बस अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करते। देखें आपसे दे दे टू अम्यूज देमसेल्व्स, ठीक है। अगर आपसे हम ये कहें कि फजर की नमाज कैसे पढ़नी होती है, तो अनस आप क्या बताएंगे फजर की नमाज क्या तरीका होता है, कितनी होती हैं रिकतें फजर की नमाज? दो सुन्नत होती हैं, दो फर्ज होती हैं, ठीक है। तो अगर आप कहें कि नहीं मैं तो अल्लाह ताला की ज़्यादा इबादत करूं भाई, फजर के वक्त मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है, तो मैं जो हूँ ना कल से चार सुन्नत पढ़ूंगा और चार फर्ज पढ़ूंगा, हैं, ताकि मैं अल्लाह ताला को ज़्यादा राज़ी कर सकूँ, अल्लाह ताला ज़्यादा खुश हो जाए। चार जब मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा सजदे होंगे उसके अंदर, है ना, और ज़्यादा रुकू होंगे उसके अंदर, और ज़्यादा कुरान की तिलावत भी मैं कर सकूँगा, तो अल्लाह ताला को तो सजदे पसंद हैं, है ना, और अल्लाह ताला को रुकू भी पसंद है, अल्लाह ताला को कुरान की तिलावत भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं क्यों ना डबल कर दूं फजर की नमाज को, सही है ना? तो बात समझ में आई? डज मेक सेंस? कहते हैं ना बात तो बिल्कुल अकल की बात है कि भाई जब आपके पास टाइम है फजर के टाइम, फजर के बाद टाइम है, तो वाई नॉट डबल योर इबादत, ठीक है। तो अब कॉमन सेंस तो आप सारे माशाल्लाह मुसलमान बच्चे हैं, मुसलमान माँ बाप के बच्चे हैं ना, वो घराने में पैदा हुए हैं, तो अब अगर हम आपसे सवाल करें कि अगर ये ऐसा करें कि चार सुन्नत और चार फर्ज पढ़ना शुरू कर दें कल से, तो क्या होगा? फजर की नमाज अदा होगी? नहीं अदा होगी, राइट, अदा नहीं होगी ना, फजर की नमाज तो नहीं अदा होगी। हालांकि आप करना क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल सिंसियर, आप किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने तौर पर आप अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डबल इबादत करके अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कहीं लोगों को दिखाने वाली तो कोई बात नहीं है इसके अंदर। फजर के वक्त तो वैसे भी कोई आकर के नहीं देखा गया आपको कि क्या कर रहे हैं घर के अंदर, ठीक है, लेकिन आपकी ये डबल इबादत जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों रिजेक्ट कर दिया जाएगा? अब इसके जवाब पे अगर आप सही तरह से पहुंच जाए तो फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर दिया जाएगा? सो दे रिजेक्टेड अल्लाह बिकॉज दे डोंट हैव ईमान। अच्छा आसान अल्फाज में बताएं, बदत वाज अ वेरी डिफिकल्ट टर्म, अंग्रेजी की वजह से वो आसान भी थोड़ी हो जाती है, क्या बात है, अंग्रेजी आसान है कोई? अच्छा और आसान जवाब, जी अच्छा, इन्होंने भी लिखा है किसी ने यहाँ पे, बिकॉज इट इज बिदअत। बिदत बड़ा मुश्किल टर्म है, बिदत समझना इतना आसान काम नहीं है, तो इस वजह से बिदत को छोड़ें और जरा आसान अल्फाज में बताएं। इन्होंने जवाब जरा अच्छा दिया है, सुन्नत के खिलाफ है, ठीक है। अब बड़े लोगों को तो जवाब नहीं देना चाहिए बच्चों के खिलाफ, बहरा तो अगर बच्चे ही हैं तो और बात है। तो भाई क्यों, आप छोटे बच्चे हैं ना, ठीक है, तो आपके लिए तो जवाब इसका ये होगा क्योंकि अम्मी ने तो कहा था कि दो रकअत सुन्नत पढ़नी है, दो रकअत फर्ज पढ़नी है, ठीक है ना, अम्मी ने सिखाई नमाज पढ़ना या पूरी सिखाई नमाज पढ़ना, और आप कह रहे हैं नहीं मैं डबल नमाज पढ़ूंगा, तो आप अम्मी के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अम्मी की नाफरमानी कर रहे हैं, अब्बू की नाफरमानी कर रहे हैं ना, तो अब ये नाफरमानी करके तो फायदा नहीं होता ना, ठीक है। अल्लाह ताला को तो अताअत पसंद है, फर्मा बरदारी पसंद है, ठीक है, और आप जो है वो कह रहे हैं नहीं मैं तो अल्लाह को खुश करूंगा, तो मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं तो ऐसी डबल इबादत करके अल्लाह को खुश करूंगा, ठीक है ना, तो ऐसी बात करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप तो छोटे बच्चे हैं तो इस वजह से अम्मी अब्बू की बात माननी है आपने, लेकिन जो तो बड़े आदमी होते हैं, बड़ी खातून होती हैं, तो उन्होंने किसकी बात माननी होती है? दे वरंट टोल्ड टू डू सो, सो व्हाई आर दे डूइंग इट? ठीक है, व्हाई, हु टोल्ड देम टू प्रे टू रकअत सुन्नत एंड टू रकअत फर्ज? नबी अलैहिस्सलाम ने बताया था ना, ठीक है, बिकॉज ही डिनाइड व्हाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अस, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला, देखें नबी अलैहिस्सलाम तरीका बताते हैं हाउ टू प्लीज अल्लाह, ठीक है। द प्रॉफिट टेल्स अस हाउ कैन वी प्लीज अल्लाह, ठीक है। इफ वी फॉलो व्हाट द प्रॉफिट टोल्ड अस, देन अल्लाह गेट्स प्लीज्ड, एंड इफ वी डू नॉट फॉलो व्हाट द प्रॉफिट टेल्स अस, बल्कि वी ट्राई टू प्लीज अल्लाह ऑन आवर ओन, अपनी मर्जी से अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं गो टू हेल। क्या कहते हैं अल्लाह ताला? गो टू हेल, तुम्हारे लिए मैंने जहन्नुम बना के रखी है, नुजुलन, सो दैट यू कैन हैव पार्टी इन जहन्नुम, ठीक है। यू आर सपोज टू फॉलो माय प्रॉफिट्स कमांड्स, मेरे नबी की बात को मानो, तब मैं खुश होऊंगा, वरना मैं खुश नहीं होऊंगा, चाहे तुम कितनी ही इबादतें करके ले आओ मेरे पास, ठीक है। तो इन काफिरों की इतनी जो मेहनतें हैं, चाहे वो इबादत की शक्ल में मेहनतें हों, चाहे वो मदद की शक्ल में मेहनतें हों लोगों की, ठीक है ना, उनको क्यों रिजेक्ट कर दिया जाएगा? क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के खिलाफ उन्होंने करी होगी, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। ये जो अल्लाह ताला की आयात है ना, कुरान, कुरान अल्लाह ताला की आयात है ना, तो अल्लाह ताला की आयात पहले भी हम बात कर चुके हैं ना, है कि अल्लाह ताला की आयात हम तक कैसे पहुंची, तो जरा इनका नाम ही याद नहीं आ रहा, अल्लाह ताला की आयात हम तक कैसे पहुंची, आयात राइट, कोई फ्लाई करते हुए आई थी, कोई कागज ऊपर से आया था, एंजल जिब्राइल आपके पास आए थे, टोल्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, तो एंजल जिब्राइल को तो सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना, सहाबी ने तो नहीं देखा एंजल जिब्राइल को, ठीक है। तो अल्लाह ताला की आयात तो हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आई ना। तो ये जो काफिर होते हैं ना, ये काफिर क्यों होते हैं? बिकॉज दे डिनाई अल्लाह आयात, बट अल्लाह की आयात कोई किसी शक्ल में कोई थोड़ी आई है। एक्चुअली व्हाट मेक्स देम काफिर इज डिनाइल ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उनको रिजेक्ट कर दिया, चाहे कितनी मेहनत करते रहे, कितनी भी मेहनत करते रहे, ठीक है ना, यू आर नॉट एक्सेप्टेड। तो यही पर अल्लाह ताला यही बात फरमा रहे हैं कि इनकी जो मेहनतें हैं ना, فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, इनके तमाम के तमाम आमाल, हबिता, हबिता का मतलब क्या होता है? कैंसिल, इरेज। जैसे आप बहुत मिसाल के तौर पर आप अपनी कॉपी के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स करें और बहुत अच्छा अच्छा आप उसके ऊपर लिखें और सब कुछ आप स्कूल का काम कर लें ना, फिर उसके बाद कोई इरेजर लेकर के आए और इस इरेजर से आपकी पूरी कॉपी को, जो कुछ आपने मेहनत करी थी, एक हफ्ते तक आपने होमवर्क किया था, पूरे होमवर्क को जो है ना वो इस इरेजर से डिलीट कर दे, इरेज कर दे, ठीक है ना। तो आप जितनी मेहनत थी वो सारी मेहनत कहाँ गई? गायब हो गई, इरेज हो गई, खत्म हो गई। तो उस यही एग्जैक्टली मतलब है, फहबतत अमालुहुम, उनके अमाल को जाया कर दिया जाएगा, ठीक है। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, और क़ियामत के दिन उनके जितने अमाल थे, इन अमाल का कोई वजन नहीं किया जाएगा, कोई उनका वेट नहीं होगा, कोई उनकी सिग्निफिकेंस नहीं होगी, कोई अहमियत नहीं होगी उनके अमाल की, ठीक है। तो वी विल एंड टुडेज क्लास विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विच इज के अमाल करना, ठीक है, काम करना, अमाल करना, मेहनत करना, ठीक है, ये सिर्फ उसी वक्त फायदा देता है कि जब आप ये मेहनत अतात, अल्लाह ताला की अतात के लिए कर रहे हो, अल्लाह ताला की अतात में कर रहे हो, यानी अल्लाह ताला ने जो ऑर्डर दिया है आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अपनी सोच और समझ से मेहनत करना शुरू कर देना, इस मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये टॉपिक है तो बहुत ही ज्यादा डिटेल, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे अगली क्लास में, अगर इसको डिस्कस करना है। किसी को कोई सवाल है दोनों क्लासेस में से, बल्कि तीनों क्लासेस में से? जी जोर से और क्लियरली बोले। नहीं, ये जो है ना, ये काफिरों की जो बात हो रही है ना, इसमें सारे काफिर कवर्ड है। इसमें कोई कोई काफिर इससे एग्जेम्प्टेड नहीं है कि कुछ काफिर होते हैं जो कि बदतरीन नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है ना, तो उनमें सबसे ज्यादा बदतरीन कौन है? काफिर। अब इसमें सारे काफिर आ गए, हर किस्म के काफिर आ गए, ठीक है, चाहे वो काफिर मुनाफिक वाले काफिर थे या वो ओपन कुफर करने वाले काफिर थे, हर किस्म के काफिर इसके अंदर। जी अच्छा, इंसानों ने अगर जानवरों के साथ ज्यादती की होगी ना, तो उनको भी फिर उसका हिसाब दिलवा दिया जाएगा किसी तरीके से, ठीक। तो अब इसका ऑर्डर जो है कि वो काफ जाहिर है, जानवर उस वक्त सामने मौजूद होंगे, उस वक्त ही हिसाब किताब कुछ लोगों के साथ हो जाएगा मुकम्मल। ये एग्जैक्टली मुझे इस वक्त ऑर्डर याद नहीं है कि जानवरों को ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर इंसानों का हिसाब किताब शुरू होगा। जानवर तो ख़त्म हो चुके होंगे, तो समहाउ इट विल बी डन कि या तो उन जानवरों को साइड पे रख लिया जाएगा, भैया अभी तुम्हारा हिसाब किताब बाकी है, क्योंकि इंसानों के साथ अभी उनका मामला है ना। तो जब इंसानों के साथ हो चुका है तो फिर जानवरों को तो ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन इंसानों को भी जहन्नम की तरफ भेज दिया जाएगा जो काफिर होंगे। Who are the seven types of people? Seven people of the shade, देखें अगर मुझे सारे याद आ गए, आप लोग तो भी हेल्प कर सकते हैं इसमें, कि फॉर एग्जाम्पल इसमें एक वो शख्स होगा कि जो के लोगों को सदका देता होगा, मदद करता होगा, और ऐसे छुप करके मदद करता होगा कि किसी को खबर नहीं होती होगी, सिर्फ अल्लाह ताला को खुश करने के लिए छुप करके लोगों की मदद करता होगा। तो ये उनमें से एक है। नहीं, ऐसे सारे लोग होंगे जो कि इस तरह से लोगों की मदद किया करते होंगे, ठीक है, और ऐसे लोग भी होंगे जो कि यानी हाँ, जस्ट रूलर, सबसे पहला इनमें वही बनता है जिसने कि बहुत ही इंसाफ के साथ अपने लोगों में ना हुकूमत करी होगी, जस्ट रूलर यानी इंसाफ वाला हाकिम। एक नौजवान, एक ऐसा शख्स जो कि ऐसे जवान हुआ है कि नेकियां ही करता रहा, जिसने कि बस एक अच्छी सी जिंदगी गुजारी, गुनाह वगैरह नहीं किए, और नेकी की जिंदगी के अंदर ही वो जवान हो गया। तो ऐसा भी शख्स होगा फिर वो, यानी बेसिकली जो भी नेकी की जिंदगी गुजारेगा और गुनाह से दूर रहेगा वो इसमें शामिल हो गया। और भी चंद इसके अंदर चीजें हैं जो कि सारी की सारी इसमें याद नहीं आ रही। तो सेवन टाइप्स ऑफ द पीपल है ना, देयर विल बी वन ऑफ ईच टाइप और मेनी, नहीं वन ऑफ ईच टाइप, नहीं देयर विल बी मेनी ऑफ ईच टाइप, ठीक है ना। बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह ऐसे ईमान वाले होंगे कि जिन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी होगी, तो उनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। एक हाँ, एक आदमी ऐसा होगा कि जिसका दिल जन्नत की तरफ लगा होगा, जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा होगा, ठीक है, दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ। अजीब बात नहीं सर फरमाई, ये नहीं फरमाया कि जो मस्जिद में रहता होगा, जो कि हर वक्त मस्जिद में रहता होगा, हर वक्त ही मस्जिद जाता रहता होगा, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा होगा। तो दिल मस्जिद की तरफ लगा रहने का क्या मतलब, कि उसको हर वक्त शौक लगा होगा कि किसी तरीके से मैं मस्जिद पहुंच जाऊँ, किसी तरीके से मैं मस्जिद में पहुंच जाऊँ, नमाज पढ़ने के लिए और कभी इतकाफ करने के लिए, कभी और नेकी काम करने के लिए, ठीक है ना। इसको कहते हैं दिल अटका हुआ होना किसी जगह पर। बेशक आप हर वक्त जा नहीं रहे, आप हर वक्त पहुंच नहीं पाते, लेकिन आपको ये दिल में ख्वाहिश रहती है कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं जाऊं, ठीक है, जैसे ही यानी मुमकिन होगा मैं जाऊं, जाया करूंगा मस्जिद। तो ये भी उन सेवन पीपल ऑफ द शेड में से एक होगा, ठीक है। चले जी, हाँ, कोई ऐसा ऐसे शख्स भी होंगे जो कि बिल्कुल अकेले में ना अल्लाह ताला को याद करके रोना शुरू हो गए, और इस तरीके के आंसू भी उनके बहने शुरू हो गए, तो ऐसा शख्स भी उस दिन जन्नत के शेड में होगा और अर्श के शेड में होगा, ठीक है। चलें, 10 मिनट भी, 11 मिनट ओवर हो गए, तो करते हैं। सलाम वालेकुम। आज से तो लड़कों के साथ साढ़े तीन बजे
Thank you.